ओम शांति। अभी आप कुछ समय पहले योग की असीम गहराइयों का अनुभव कर रहे थे और बहुत महीनता के साथ हमारी उषा बहन ने आपके सामने कुछ स्वरूप कुछ अवस्थाएं रखी और आपने अनुभव भी किया होगा। संगम युग के साथ साथ हम लोगों ने शिवरात्रि के जो हम पर्व मनाते हैं और कहते हैं आज 78वीं शिवरात्रि हो गई, अब ये 79वीं शिवरात्रि हो गई, तो ऐसे कहते ये मालूम होता है कि संगम युग का वक्त बहुत तेजी के साथ व्यतीत होता चला जा रहा है। उसके लिए हमने क्या तैयारियां की हुई हैं? जब कभी लोग कहते हैं अब तो समय समाप्त होने पर आ गया और अब चला चली की बेला है, अंतिम तैयारियां, तो सबसे पहले एक बात जहन में आती है कि ये अंतिम क्या? संपूर्ण सृष्टि का कालचक्र का अंतिम या हमारी इस देह चक्र का, इस दैहिक रथ की आयु का अंतिम? अंतिम क्या? हमको किसकी तैयारी करनी है? तो निश्चित है कि कालचक्र की गतिविधियों पर भी बहुत ध्यान देना है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा वक्त का हर शय गुलाम, इस काल की मुट्ठी में हम सबके ये खिलखिलाते हुए चेहरे मुस्कुराती हुई नजरें बंद हैं। थोड़ा सा अगर कभी भी ये काल चक्र में दबाव बढ़ जाए तो ये हमारी मुस्कुराहट बंद हो सकती है। जब शुरू में साप्ताहिक कोर्स कर रही थी तो सीढ़ी का चित्र आप सबने भी समझा होगा और मैंने भी समझा था। जब 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं तो अंतिम समय आकर ये कहते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म, अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास है। दुनिया हो सकता है कि 20-30 साल और चले, 40 साल और चले, दुनिया कितने साल चले, कली क्या अंतिम हो जाएगा? बहुत बार सवाल उठते हैं, लेकिन अगर मेरी नजरें बंद हो गईं तो मेरे लिए दुनिया का कल का दिन ही अंतिम दिन होगा। तो हमें यह गौर करना है कि हम संसार के उस काल चक्र में ये सृष्टि कितने दिन और चलनी है, इस पर चिंतन न करके ये चिंतन करें हम कितने दिन चलने हैं। बहुतों से हमने पूछा अनेकों बार, कोई सर्टिफिकेट लाए हो, कितने दिन रहना है यहां? तो सबके हाथ हिल जाते हैं कि कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम इस दुनिया में बहुत कुछ आने के बाद संग्रह करते हैं, समेटते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाते हैं, साधन एकत्र करते हैं, लेकिन हमको बड़ी लंबी प्लानिंग के बाद भी ये पता नहीं कल का दिन क्या होगा। ईमानदारी से अगर पूछिए तो इस दुनिया में एक पल भी किसी को भरोसा नहीं है। जब हम कहीं छोटे से सफर पे जाते हैं, बड़ी तैयारियां करते हैं, ये भी रख लें, वो भी रख लें, कोई चीज रह न जाए, वहां जाकर परेशानी ना हो, बहुत कुछ सहेजते हैं। यहां मधुबन भी जब आए होंगे ना तो अटैची लगाई होगी, बैग लगाया होगा, बहुत सा सामान रखा होगा, तो जैसे यहां आने के लिए केवल 7 दिन गुजारने हैं और बहुत कुछ रखा हमने, विचार कीजिए ऊपर चलना है हमने क्या क्या रखा, क्या क्या रखा, तो ये हमारे अंदर एक चिंतन चलना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि समय की घड़ियां बहुत थोड़ी हैं और हमें चलना है। जब हम पढ़ते हैं, बाबा हमें मुरलियों में कई बार सुनाता है कि न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए, हम कब चलने लग जाएं, कब यहां से हमारा वारंट आ जाए, तो हम क्या करें, उसके लिए कौन सी तैयारियां करें, कैसे अपने आप को तैयार करें। हम अपने आगे या तो साकार बाबा को सामने लाएं और या फिर अपने आगे अपनी आदरणीय पूजनीय दादियों को सामने लाएं। जब भी कभी तैयारी की बात होती है तो कैसे कहें कि वो तैयार थे और हम तैयार हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि साकार बाबा ने भी तैयारियां की थी। पहले जब बहनें आती थी ग्रुप लेकर के, तो बाबा बड़े प्यार से सारा समाचार लेते थे, बच्ची सब ठीक है, सेंटर ठीक है, जिज्ञासु भाई बहन ठीक है, सब बच्चों का हालचाल सही है। लेकिन धीरे धीरे इस विस्तार को बाबा ने समेट लिया और इतने अच्छे ढंग से समेटा। मुझे याद आता है आदरणीय मनोहर दादी का कई बार ये बात सुनाना होता था कि हम लोग चर्चा करते थे, बाबा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। अरे बाबा तो गुम हो गया, बाबा यहीं बैठा था लेकिन बाबा तो गुम हो गया, बाबा वहां है ही नहीं। तो लगता था कि बाबा अभी हां हां कर रहा था, अभी कहां गया। तो बाबा पता लगा, परमधाम तक की सैर कर आया, अपने आप को उससे समेट लेता था। फिर बाबा कहा करता था, दो मिनट में दो शब्दों में सुना दो क्या हुआ। बाबा को बच्चे जानते हैं बाबा की क्या हुआ, आप तो दो शब्दों में सुना दो। तो बाबा ने और समेटा, दो शब्दों तक छोड़ दिया। हम भी विचार करके देखें कि हमने कितना समेटा, हमारे अंदर कितनी जिज्ञासा होती है। हम कोई भी सफलता अर्जित करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि दो मिनट दादी समय देती तो हम बड़े विस्तार से बताते कि कैसे हमको इस कार्य में सफलता मिली, हमने कितनी मेहनत की, हमने कितने पापड़ बेले, तब जाकर के ये काम सफल हुआ। विचार करने वाली बात है कि जब वक्त के हाथों हमारी इस जीवन की सारी कहानी मुट्ठी में बंद है, तो हम भी अपने जीवन की तैयारी कर लें। और उस तैयारी के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपने को योगित्वात्मा, कर्म योगित्वात्मा सबसे पहले बना लें। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम्हारी परीक्षाएं होंगी, अंतिम परीक्षा में तुम्हें पास होना है। जब क्लास कराया जाता है तो लोग सोचते हैं, अच्छा कोई दिन आएगा, कोई परीक्षा होगी, बताएंगे, कोई हॉल में कोई एग्जामिनेशन पेपर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, यहां तो हर पल पेपर है, हर क्षण पेपर है, हमारी नजरों का पेपर, हमारे बोलने का पेपर, हमारे चलने का पेपर। बाबा ने कहा, दुनिया में जो और सब कोई एक्टिंग करते हैं तो पीछे कर्टन होता है, दाएं बाएं स्क्रीन होती है, सामने अभिनेता अभिनय कर रहा होता है, केवल सामने से लोग देख रहे होते हैं। लेकिन इस संसार के रंगमंच पर हम जो पार्ट बजा रहे हैं तो हमें दाएं से भी देख रहे हैं, हमें बाएं से भी देख रहे हैं, हमें सामने से भी देख रहे हैं। हम कहीं भी ये नहीं कह सकते हमने ये संवाद नहीं बोला था, हमने ये एक्टिंग नहीं की थी, अरे वो तो ऐसे ही हमसे गलती हो गई। हमें जो करना है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बाबा के बताए गए पद चिन्हों के अनुसार, श्रीमत के अनुसार करना है। जब हम अपनी दादियों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि कैसे दीदी ने तैयारी की, एक रट लगा दी थी, अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब घर चलना है, और घर चलना है तो मना तैयारी करनी है। और दीदी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। दादी को भी जब जाना था तो दादी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहली तैयारी है कि हम इस देह भान से मुक्त हो जाएं। पहले पहले दिन आपको मोहिनी दीदी सुना रही थी कि दादी ने कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमेशा दादी छुट्टी भी लेती थी तो ये कहा करती थी कि दादी फला जगह जा रही है, दादी ऐसा चाहती है, दादी जस्ट ए थर्ड पर्सन। तो हम अपने को देह भान से मुक्त करें तो महसूस करेंगे कि मैं आत्मा करणहार इस रथ द्वारा कार्य करा रही हूं। मेरी पहली तैयारी होनी चाहिए कि मैं इस आईने में जो अक्ष देखती हूं तो मुझे आत्मा दिखाई दे, यह शरीर नहीं। लेकिन हम आईने में इस शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। तो देह भान से मुक्त होने के लिए देही की स्मृति हमको कितना समय रहती है, हम इसको चेक करें। हमको टेलीग्राम मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हमको टेलीग्राम नहीं मिलते, बहुत सारे टेलीग्राम मिलते हैं। इस देह की ओर से टेलीग्राम मिलते हैं, उम्र के तकाजे, उम्र बढ़ती चली जाती है, पहला टेलीग्राम आ जाता है बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, डाई करवा लेंगे। दूसरा टेलीग्राम आता है, आंखों से दिखाई कम पड़ने लग जाता है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, चश्मा लगवा लेंगे। अरे अभी तो दुनिया देख लो, देखा जाएगा, थोड़ा बहुत कमजोर हुई है। फिर पता लगा हाथ पैरों में बहुत तकलीफ होने लगी, चल नहीं पा रहे हैं, तो हम दूसरों को सहयोगी बना लेते हैं। हमारी वाणी अवरुद्ध होने लगती है, बोल सही सही नहीं निकलते, कहते कोई बात नहीं हम लिख करके दे देंगे। तो ये हमारी इंद्रियां समय समय पर हमको वार्निंग देती हैं, अब भी समेट लो, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था आ गई है, अब भी समेट लो, तुम निरासक्त हो जाओ। लेकिन हम फिर भी ये सोचा करते हैं अभी तो वक्त है। तो सबसे पहली चीज है कि हमको निरासक्त होना, निर्मोही बनना, अपने ममत्व से दूर होना। गीता में भी जब गीता का ज्ञान दिया गया तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, हे अर्जुन निर्ममो भूत्वा। तो निर्ममो भूत्वा से मतलब निर्ममता से नहीं, निर्दयता से नहीं, बल्कि ममत्व से न्यारे हो जाए। और बाबा ने हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझाई है कि जो भी हमारे आसपास एक समाज, एक संसार खड़ा हुआ है, जो हमारे अपने हैं, वो अपने हिसाब किताब के अनुसार हमारे अपने हैं। जितने हमारे से संबंध रखे हुए हैं, जरूर कोई हिसाब किताब आज का नहीं तो पिछले जन्म का है। चुकता करने के लिए आए हैं, जिन्हें हम बहुत मेरा कहते हैं, तो इस मैं और मेरे से मुक्त होना है। अगर मैं और मेरे से मुक्त नहीं होते तो निरासक्त हो नहीं सकते, हम ममत्व से परे हो नहीं सकते। और इसके लिए हमेशा ये ध्यान रखें कि संसार के रंगमंच पर हम सब अपना अपना पार्ट बजाने आए हैं, स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है, ये ध्यान रखना। हम जितने भी वाहन खरीदते हैं तो उससे सबसे पहले पूछते हैं पावर लॉक है, पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक है, ये बताओ हमारे इस रथ में कितना पावर ब्रेक है, हमारे इस रथ का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं, एक पल हमारे हाथ में नहीं है। हम बहुत कुछ सोचकर चलते हैं, यहां से निकले अहमदाबाद जाना है, रास्ते में कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया और हम अहमदाबाद तक नहीं पहुंचे। हम बोल के जाते हैं अभी गए और अभी आए, लौट के आके इस काम को कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाला बेहतर जानता है हमारी घड़ियां कितनी हैं, हमारी सांसें कितनी हैं, तेरी सांसें रही हुई कितनी हैं। तो ये विचार करने वाली बात है कि जो कुछ है करण करावन हार करा रहा है, हम मात्र करण हार हैं। बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, सबने भरत का नाम सुना होगा, आखिर जड़ भरत बनना पड़ा उनको। बहुत छोड़कर आए थे, राज्य भी, रानी भी, संपदा भी, लेकिन एक छोटे से मृग सावक को, बाहर बैठे हुए थे गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे, और वहां ही उनको ऐसा लगा कि एक हिरनी पानी पीने के लिए आई और पीछे से शेर की गर्जना सुनाई दी। हिरनी ने एकदम छलांग मारी, तो छलांग मारने पर उसके तो शरीर का अंत हो गया, लेकिन जो नवजात उसके पेट में था उसको छोड़ गई, जन्म दे गई वहीं जाते जाते भी। और उस ऋषि को लगा कि इस शिशु ने क्या बिगाड़ा है, इसको मैं ले चलता हूं। अपने यहां ले जाकर के उसको उन्होंने पालना दी, सुबह शाम अपने हाथ से उसको दाना खिलाते थे, और उनको ऐसा लगने लगा धीरे धीरे कि ये मेरा है। उन्होंने ये नहीं सोचा ये भी उस जगत नियंता का दिया हुआ है, और न जाने कहां से मोह की जड़ उनके अंदर पल्लवित होती गई। वो उसको धीरे धीरे खिलाते गए। हम सब तो घोर गृहस्थ में बैठे हैं, हमारे यहां भी जब इस तरह के कोई नवजात शिशु आते हैं तो हम आकर बताते हैं बहनों को, अरे बहुत अच्छी है, वो तो बाबा को ही याद करती है, रेड लाइट जलती है तो बस बाबा की ओर देखती है, बहुत अच्छी आत्मा आई है बहन जी हमारे घर में, और उस आत्मा से थोड़ा थोड़ा स्नेह की रग जुड़ने लग जाती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, केवल भक्ति मार्ग के लिए ही नहीं है कि कोटि कोटि सब जतन कराही अंत राम कहावत नहीं, वो वहां सुनाते हैं, लेकिन हमें यहां भी बाबा ने पक्का कराया है कि हर चीज से हम अपने आप को छुड़ाते जाएं, निरासक्त होते जाएं। दूसरी तैयारी है कि हमारी आवश्यकताएं सीमित हो जाएं। आज साधना के साथ साधनों पर भी हम बहुत निर्भर होते हैं और हमारा ध्यान साधनों पर जाता है, तो साधनों पर हमारा ध्यान जाता है, एक लंबी फहरिस्त है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, अगर ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा, अगर वो नहीं होगा तो कैसे चलेगा, ये तो चाहिए ही चाहिए। हम स्लीपर क्लास में सफर नहीं कर सकते, न मिले सेकंड में तो थर्ड एसी तो करा दो भाई। कमरा यहां आए हैं शांतिवन में जो मिला ना, उसमें एसी नहीं है, रात को नींद नहीं पड़ती है, क्या ये एसी शुरू से लेके आए थे? विचार करके देखो, हमने कितनी सारी चीजों की ऐसी आदत डाल ली है जिनके बिना भी हमारा कार्य बखूबी चल सकता है। जितना हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते जाएंगे, ये तैयारी नंबर दो है, जितनी हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते जाएंगे उतना ही अंतिम घड़ियों का मुकाबला कर सकेंगे। याद रखना, बाबा ने कभी नहीं बताया है कि अंतिम घड़ी किस दिन आएगी, बताया कभी किस दिन आएगी, ये नहीं बताया। जब लोगों ने पूछा भी, बच्चों ने पूछा भी, तो बाबा ने कहा बहुत ज्यादा डेट जानने की ख्वाहिश है तो मेरे ज्योतिषी बच्चों के पास चले जाओ, वो बता देंगे कि अंतिम दिन कौन सा है। बाबा ने नहीं बताया, बाबा ने कहा तुमको तैयार रहना, जो होना है अचानक होना है, हमको एवर रेडी रहना है। तो उस समय का जो दृश्य हमारे सामने होगा उसे हम झेलने में सक्षम होंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम इतना अनाज संग्रह करके रख लें, अगर अकाल पड़ भी जाएगा तो अपन तो खाते रहेंगे, हम इतना ये चीज संग्रह कर लें अपना काम तो चलता रहेगा, मत भूलिए अगर हमारे घर में होगा पड़ोसी के घर में नहीं होगा तो चैन से आपको खाने आपको भी नहीं देगा, कैसे भी करके ले जाएगा, चैन से आपको भी खाने नहीं देगा। तो हमें अपनी वृत्ति पर नियंत्रण चाहिए, ना कि स्टॉक चाहिए। तो हम अपनी चीजों को, अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सीमित करते चलें। अगर हम ये चेक करेंगे कि हाँ हमारी आवश्यकताएं सीमित होती जा रही हैं, तो हम सफल होंगे उस अंतिम दृश्य से मुकाबला करने में। और अगर हमने अपने जीवन के संयम में साधना के साथ साधनों का भी समन्वय करके रखा है तो अंतिम तैयारी के लिए हम मजबूत नहीं होंगे। देखिए, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, भागवत में बड़ा वर्णन करते हैं लोग कि ये बताओ, युधिष्ठिर नहीं उसका जवाब दे पाया था, चारों भाई फेल हो गए थे, कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? तो कहा गया था सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जीवन मरण धर्मा है, इस जीवन की क्षणभंगुरता का मनुष्य को ज्ञान है, उसके बावजूद भी हमेशा भ्रम में जीता है। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान मिला है। हम बड़े फख्र से कहते हैं हमें भगवान पढ़ाता है। हमें एहसास है कि भगवान हमको नई सतयुगी सृष्टि के लिए तैयार कर रहा है। तो विचार करके देखें, हम भी तैयार हो रहे हैं क्या? हमने अपने साधनों की लिस्ट में से कुछ साधन माइनस किए हैं क्या? हमारी इतनी तैयारी है? चलेगा, जो भी मिलेगा चलेगा। भक्ति वाले बड़े फक्र से कहते हैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो हम तो ज्ञान वाले हैं, हमें बाबा ने बता रखा है नथिंग न्यू। हमने इस सिद्धांत को अपने जीवन में कितना रवां किया है कि जो कुछ है कल पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है, इसमें कोई चीज नथिंग न्यू माना नई नहीं है। हमारे संकल्पों के सूत्र उलझते चले जाते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्या किया। नथिंग न्यू, जो कल पहले कहा था वही डायलॉग तो उसने आज बोला है। जैसे ही हम सोचते हैं उसने ऐसा क्यों, क्यों शब्द लगाया, तो व्यर्थ के दरवाजे खुल जाते हैं। विचार करने वाली बात है, क्या हमने इसकी तैयारी की है कि जो कुछ हो रहा है हर पल वो नथिंग न्यू के दायरे में है। इसके साथ साथ हम और विचार करके देख लें अपनी तैयारियों के लिए, क्या हमने बाबा की नजरों से अपने इस ब्राह्मण परिवार को देखना प्रारंभ किया है। हमारी परम श्रद्धेय गुलजार दादी, क्या नहीं होता, इतना बड़ा दैवी परिवार है, कैसे कैसे लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ कहते सुनते हैं। हाँ, दादी के पास भी जाते होंगे, कोई समस्या लेकर भी जाते होंगे, लेकिन दादी बड़े प्यार से मुस्कुरा देती है। दादी के अंदर जरा भी हलचल नहीं आती है और मुस्कुरा के कहती है राजधानी स्थापन हो रही है ना। वो अपने अनुसार ही तो कार्य करेगा, वो जिस पद के योग्य तैयारी कर रहा है उसी अनुसार तो संवाद बोलेगा। कितनी बड़ी शिक्षा है ये कि हमारा बोल हमारे पद का निर्धारण कर देता है, हमारा कार्य करने का तरीका हमारे पद का खुलासा कर देता है। हमारे बोल, हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे बोलों में उतनी दिव्यता है जो दिव्यता बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। तो विचार करके देखिए कि जब हम तैयारी की बात करते हैं तो हम कितने नष्टो मोहा बने, हम कितना समय अपना योग युक्त होने में देते हैं। बाबा ने कभी बैठा बैठा योगी नहीं बनाया हमको, बाबा ने चलते फिरते कर्म करते योग करना सिखाया। जो लोग ये शिकायत करते हैं क्या करें हमारा 8 घंटे तो योग लगता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर हम प्रयास करें तो हमारा 8 घंटा कहीं गया नहीं। मॉर्निंग में अगर हम 4 से 4:45 करते हैं, जरा 3 से शुरू हो जाए। अगर 3 बजे उठ करके हमने और 4:30-5 तक योग किया, आधा घंटा तो सहज बढ़ गया, 1 घंटा तो सहज बढ़ गया। फिर हम अगर समय पर क्लास में पहुंचने लग जाएं, ये न सोचें कि मुरली जब शुरू होगी तब तक पहुंच ही जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे नाश्ते से पूर्व, आज मैंने सुबह बोला था स्नान करना बड़ा जरूरी होता है, तो ये एकाग्र होकर जब हम बैठते हैं तो हमारी आत्मा का एक तरीके से शुद्धिकरण हो जाता है, स्नान हो जाता है। फिर नाश्ते के बाद आप मुख शुद्धि जरूर करते हैं, हम बहुत जल्दी में होते हैं निकल चले, अरे थोड़ी देर सही, ये 3 मिनट भी तो काउंट हो जाएंगे। आदरणीय दादी हमको हमेशा सिखाती है, पानी पीने जा रहे हो, दिन भर में 8 गिलास पीते हो, अरे चलो 5 मिनट योग करके पियो ना। अगर हमने 12 घंटे में 12 बार पानी पिया और 5-5 मिनट योग किया, उम्मीद रखते हैं 1 घंटा हो जाता है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 घंटा। ये छोटा छोटा समय को चुरा लेना समय की गठरी से हमारे 8 घंटे के योग में सहायक है। दो घंटे सुबह हो गया, आधा घंटा योग में हो गया, ढाई घंटा, एक घंटा हमारा सारे दिन में जो पांच पांच मिनट मतलब ट्रैफिक कंट्रोल के लिए करते हैं वो हो गया, और एक घंटा जो हमने पानी पिया, पांच पांच मिनट योग किया वो हो गया। भोजन करते समय हमने बाबा को स्वीकार कराने के लिए तो किया, लेकिन फिर डाइनिंग टेबल टॉक शुरू कर दी। अगर डाइनिंग टेबल टॉक ना करके हर ग्रास के साथ बाबा की याद संभालें तो वहां भी 15 मिनट मिल जाएंगे हमारे खाते में। ये वो अकाउंट है जो हमें जमा करना ही है, सायंकाल 6:30 से 7:30, ये भी एक घंटा कहीं नहीं गया। रात्रि को 9:30 से 10 सोने से पहले हमको अपने बाबा को सारा हिसाब देना है, अपना सारा चार्ट देखना है। जब हमारे संकल्पों में ये दृढ़ता होगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत चयन कर लेंगे। एक घड़ी, आधी की पुण्य आधी, अच्छा नहीं होता है अगर 8 तो 4 तो हो जाएगा, वो तो कहीं नहीं गया। तो हमें जितना योगयुक्त होंगे उतना हम अंतिम समय की तैयारियों में अपना बैगेज तैयार कर सकेंगे। फिर किसी चीज का आकर्षण नहीं होना चाहिए। आज भी हम बाहर निकलते हैं, आवश्यकता नहीं है लेकिन आकर्षण खींच लेते हैं। संत अरस्तु से पूछा था किसी ने, आप बाजार क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए आता हूं, पहले तुम बताओ तुम बाजार क्यों आते हो। उसने कहा मैं इसलिए आता हूं कि जो चीजें नई नई बाजार में इन्वेंशन होके आई हैं, अगर मेरे घर में है तो ठीक है, और नहीं है तो अगली बार ले जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं बाजार इसलिए आता हूं कि दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके बिना भी मैं बड़े आराम से जी सकता हूं। तो हम ब्राह्मण कुलभूषणों को इस बात का फख्र होना चाहिए कि दुनिया में कैसी चीजें पड़ी हुई हैं, मगर वाह रे बाबा हमें उसने कितना समेट दिया है, हम उनके बिना भी आराम से जी सकते हैं। तो अगर अंतिम तैयारियां करनी हैं तो हमें हर आकर्षण से मुक्त रहना आना चाहिए। फिर बाबा की जो नजरें हैं उन नजरों से इस दैवी परिवार को देखना आना चाहिए। बाबा ने कभी किसी का अवगुण नहीं देखा, हमें भी गुणग्राही बनना है। न जाने कितने विकारों में फंसे थे, बाबा ने उस मिट्टी से निकाल के हमें हीरा बना दिया। बाबा ने कभी नहीं कहा अरे तुम क्या सुधरोगे। ये ध्यान रखें, हमें भी कभी किसी को नहीं कहना तुम क्या सुधरोगे। बाबा ने असीम रहम हम आत्माओं के प्रति रखा और हमें निकाल कर आज बेदाग हीरा आज भी बना रहा है, आज भी पढ़ा रहा है। तो हम भी अपने परिवार को उस निगाहों से देखें। दीदी हमेशा कहा करती थी अगर कभी किसी की कमी देखते हो तो जुबान पिलाते क्यों। अपने परिवार में कभी किसी की कमी होती है तो क्या अखबार छापता है, वो चुरा लेता है, छुपा लेता है। बाबा ने भी हमें सिखाया कि अगर किसी में कोई कमी है तो ब्राह्मणों में आपस में हमको योगदान नहीं देना, सहयोग देना है। हम उन्हें सहयोग दें, यदि वो नहीं चल पा रहा यहाँ ही, अगर कोई नहीं उठ पाता तो हम दो हाथ बढ़ा के सहारा देते हैं, आइए खड़े हो जाइए, बहुत देर से बैठे हैं ना। तो जैसे हम स्थूल में किसी को सहारा देते हैं आइए खड़े हो जाइए, स्थूल में सहारा देते हैं कि आइए चलिए हम आपको क्रॉस करा देते हैं, आप नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, किसी को नेत्र शक्ति कम है तो हम मदद करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर पुरुषार्थ में कहीं कोई कमी है, मैं उस आत्मा के लिए, मेरा ही तो भाई है, मेरी ही तो बहन है, मैं उसके लिए खास योग करूंगी 15 मिनट, वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी कमी को मुझे किसी से कहना नहीं। बड़ी दादी के पास भाई बहन पहुंचते थे, बड़े हृदय से, खुले हृदय से कहते थे दादी हमसे ऐसा हो गया, लेकिन कभी किसी दूसरे ने नहीं जाना कि जो अगला आया था वो क्या कहने आया था, किस कमी की बात कह गया और दादी ने उसे क्या समझाया। कभी कोई बात यज्ञ में फैलती नहीं थी, कभी नहीं फैलती थी, कोई जान नहीं पाता था कहां क्या हुआ है। तो हमने दादी को देखा एक भाई ने बहुत जिद की कि हमको ले चलिए माउंट आबू, मैं बहुत बंधन में हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा। इलाहाबाद आया हुआ था, उसके बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। तो बोला मैं यही मेरे पास दिन है, आप जा रही हैं लिए चलिए, प्लीज लिए चलिए। तो देख के उसकी दशा को ले आई यहां तक। और जब दादी के पास ले गई और दादी को मैंने बताया कि दादी इस भाई को बंधन है और ये केवल पहली बार, कई सालों से ज्ञान में था मगर पहली बार आज इस यज्ञ में आया है। वो दादी को देखा, उसके दोनों आंख से आंसू गिर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहा है, आंसू गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। दादी ने अपना रुमाल निकाला, खुद उस भाई के आंसू पोंछे, उसको कहा योग को और बढ़ाओ, बंधन मुक्त हो जाओ। बस इतनी बात हुई, वो वहीं बैठ गया, दादी के पैरों में उसने सर झुका दिया। दादी ने कहा नहीं, तुम बाबा को थोड़ा याद करो और बढ़ाओ योग की शक्ति को, तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाओगे। तो जैसे जानी जानन हार जानता है, हमारी दादियां भी जितना साइलेंस पावर में रहती थी, सामने वाले की सारी जन्म पत्री जानती थी। तो हम अगर उस साइलेंस पावर का प्रयोग करेंगे तो अपनी अंतिम तैयारी कितनी हुई है आराम से उसे चेक कर सकेंगे। पॉइंट्स बहुत सारे हैं अंतिम तैयारी के, मगर हमेशा इस दुनिया में गुजरते हुए याद रखें कि दुनिया में है, दुनिया के तलबगार नहीं है, बाजार से गुजरे हैं, खरीदार नहीं है। ओम शांति।